अन्यत्र धर्माद् अन्यत्र अधर्माद् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद सर्वे वेदा यत् पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। बालक नचिकेता ने ब्रह्म तत्व का सम्यक दिग्दर्शन करते हुए परोक्ष ज्ञान सविस्तर प्रकारेण आचार्य यम के सामने रखकर अपने मन की गहरी जिज्ञासा को गुरु के सामने रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान के लिए जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है, और जहां पर भी जिज्ञासा है वहां मालूम पड़ता है कि उसके पहले अज्ञान की गहरी वेदना है। अज्ञान का ज्ञान हुए बिना व्यक्ति के मन में ज्ञान की पिपासा का उदय संभव नहीं है। पहले मालूम तो हो कि मैं अज्ञानी हूं, ये मेरे को मालूम नहीं है। यदि यही मालूम नहीं है कि ये चीज मेरे को मालूम नहीं है, तो आदमी मालूम करने के लिए आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए अज्ञान का ज्ञान नव्य न्याय में इस ज्ञान को अनव्यवसायी ज्ञान बोला है। अज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि अज्ञान का ज्ञान ना हो तो हम उस अज्ञान को काटने के लिए तत्पर होंगे कैसे? रोग है लेकिन पता नहीं है, तो रोग को मिटाने के लिए प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी हमारी। इसलिए सर्वप्रथम रोग का पता होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही अज्ञान का पता होना बहुत जरूरी है। अब अज्ञान का पता दो तरीके से संभव है, लक्षण विधिया अथवा हम ज्ञानी के पास पहुंच जाए। रोग का पता भी दो तरीके से लगाया जा सकता है, लक्षण से रोग का पता होने लगता है। जैसे ठंड लगने लगी, बुखार आ गया, तो आप कह सकते कि ये शायद मलेरिया हो, उसको जानने का और कोई उपाय नहीं है। अपने आप में स्वयं को जानना है तो लक्षण विधेया, बुखार के जो लक्षण हैं, रोग के जो लक्षण हैं, वो कई बार रोगी को सूचना देते हैं कि अमुक रोग है। इसका दूसरा उपाय है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। कई बार ऐसा होता है कि मालूम ही नहीं था कि ये रोग है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद मालूम पड़ा कि ये रोग है। ऐसे ही हमारे जीवन में अज्ञान है, ये जानना हो तो लक्षण है। अज्ञान जन्य शोक मोह जलन घृणा ईर्ष्या, ये सारी चीजें अज्ञान के लक्षण हैं। ये सारी चीजें, ये जो विक्षेपात्मक जगत हैं, ये सब अज्ञानी होने के लक्षण हैं। और इन सारी चीजों की संवेदनाएं हमारे अंदर अज्ञान की संवेदना निर्मित कर सकती हैं। हमें मालूम है कि हमें शोक नहीं होना चाहिए, जलन घृणा ईर्ष्या द्वेष, ये जो दुख की अनर्थ परंपरा, और इस दुख की अनर्थ परंपरा को जब हम झेलते हैं तो हम खोजते हैं फिर, जैसे बुद्ध ने खोजा। बुद्ध को दुख हुआ, दुख। बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, और देखने के बाद बुद्ध के मन में एक वेदना प्रकट हो गई। बुद्ध सोचने लगे कि मैं जरा से, मरण से, अस्वस्थता से, अस्वस्थता जन्य दुखों से, ये सारी दुख की श्रृंखलाएं हमारे जीवन में, जलन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इससे परे कैसे हो जाऊं। ये लक्षण मालूम पड़े, दुख के लक्षण, अज्ञान के लक्षण मालूम पड़े, और उसके बाद फिर उसको मिटाने के लिए चल पड़े। अब एक दूसरा उपाय है अज्ञान को जानने के लिए, वो है गुरु के पास जाए। ज्ञानी के पास जाने के बाद हमें सूचना मिलनी शुरू हो जाती है कि हम अज्ञानी हैं। परम पूज्य महाराज श्री के पास किसी भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी आप जब सत्संग करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हम दुखी हैं, आपका सत्संग श्रवण करते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि हम अज्ञानी हैं, लेकिन जब आपके सत्संग के बाद हमें नहीं मालूम पड़ता है कि हम दुखी हैं, ऐसा लगता है कि हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। यही तो विशेषता है, ज्ञानी के पास गए बिना ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम अज्ञानी हैं, हमारा कद हमें मालूम होना शुरू हो जाता है। और जब वो सूचना देते हैं कि वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक आनंद क्या है, तो उस समय हमें मालूम होने लगता है कि वास्तविक सुख ये है, जिसको हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, और वहीं से जीवन में क्रांति का सूत्रपात हो जाता है। आदमी फिर सोचने लगता है कि सच्चा सुख क्या है, सच्चा आनंद क्या है, दुख निवृत्ति क्या है, उसके उपाय क्या है। ज्ञानी के पास जाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमें मालूम ना हो कि हम अज्ञानी हैं, और एक बार मालूम हो जाए कि हम अज्ञानी हैं और कुछ करना नहीं है, एक बार केवल पता हो जाए कि हम अज्ञानी हैं और उसके बाद फिर अंदर से स्फुरना, उस अज्ञान को मिटाने की प्रेरणा, प्रवृत्ति, पुरुषार्थ अपने आप शुरू हो जाता है। और यहां पर भी मालूम पड़ा, अज्ञान का बोध हुआ कि मैं अज्ञानी हूं, और उसी के साथ उनके जीवन में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का उदय हो गया। जो आप ब्रह्म सूत्र में पढ़ते हैं, पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और यहां बालक नचिकेता के जीवन में भी ब्रह्म जिज्ञासा का उदय हो गया। यत पश्यसि तद वद, आपके जीवन में जो अपरोक्ष अनुभूति है वो आप मेरे को कहिए। रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब गए तो वहां पर भी यही भाव था, वो पूछ रहे थे कि आपने ईश्वर को देखा है, आपने भगवान को देखा है, भगवान के बारे में सुना तो हमने भी बहुत है, और सुनाना चाहे तो हम भी उस पर प्रवचन कर सकते हैं, बहुत बड़ी व्याख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं बिना देखे, केवल सुनकर श्रद्धा से। लेकिन विवेकानंद जी महाराज जी ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि आपने देखा है। बिल्कुल बालक नचिकेता का भी यही प्रश्न है, यत पश्यसि। वहां पर भी विवेकानंद जी ने बोला आपने देखा है, और वहां जवाब भी मिला यही, बोले हां। रामकृष्ण परमहंस ने तो यहां तक कहा कि अरे बोले तुमको जैसे मैं देख रहा हूं ना वैसे मैं उसको देखता हूं। और वो बात केवल शब्द की नहीं थी, वो गहरी अनुभूति की थी। और उसके बाद की घटनाएं तो आपको मालूम है। यहां बालक नचिकेता ने बहुत गहरी बात बोली, यत पश्यसि तद वद। और उसके बाद बहुत प्रसन्न हुए आचार्य यम, क्योंकि वो जान गए कि बालक नचिकेता की अंतश्चेतना की चाह क्या है, वो वास्तविक क्या चाहते हैं। गुरु जानना चाहते हैं कि शिष्य चाहता क्या है, और जानने का कोई उपाय नहीं। हमारा जो आचरण यह हमारे होने की सूचना है, हम जो बोलते हैं, हम चलते हैं, क्रियाएं करते हैं, ये सारी क्रियाएं हमारे होने की सूचना है। हम क्या है, अंदर से सोचते क्या है, वास्तविक रूप से हम भीतर से क्या है, वो सारी चीजें शब्दों में आ जाती हैं, चाह में आ जाती हैं, क्रियाओं में, आचरण में आ जाती हैं। आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, और डॉक्टर के पास जाए तो उसकी व्याकुलता बता देती है वो कितना परेशान है। और डॉक्टर के पास जाए बड़े मुस्कुराते हुए आनंद से, और डॉक्टर को बोले डॉक्टर मेरा सिर दुख रहा है, तो डॉक्टर मानेगा ही नहीं। डॉक्टर नहीं मानेगा। डॉक्टर देखता है रोग और उस व्यक्ति के कहने के ढंग, वो अनुमान लगाता है कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है। और कई बार तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर अच्छी दवा दे इसलिए बहुत ज्यादा वो दुख का प्रदर्शन करता है, ये भी देखने को मिलता है। एक बार की बात है, हरिद्वार में थे हम लोग, निर्मल संप्रदाय के आचार्य श्रीमान स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, उनके पास बहुत सारे महात्मा लोग रहते हैं, पचासों साधु रहते हैं। एक महात्मा था, वो हमारे बगल के कमरे में रहते थे, और उनके कमर में, पैर में कोई दर्द था। बहुत आनंद से वो हम लोगों से बातचीत किया करते थे। अचानक मैंने देखा कि जैसे ही वो आचार्य के कक्ष में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने एक हाथ कमर पर रखा, टांग टेढ़ी की, और बहुत लंगड़ते लंगड़ते आचार्य श्री के पास गए, और उन्हें बहुत ही टेढ़ा मुख करके बोला, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है। और वो बीच बीच में कराह में रहे थे, आह आह ऐसा। तो हमने भी देखा कि ये क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, ये क्या हुआ। बाहर जब आए, बाहर आने के बाद मैंने पूछा, और वो बाहर आते ठीक हो गए हो, तो मैंने कहा कि अंदर क्या हुआ था। अरे बोले ऐसा नहीं करूंगा तो बोले डॉक्टर के पास भेजेंगे ही नहीं हो। वो सोचेंगे कि छोटी मोटी बीमारी होगी, ध्यान नहीं देंगे, और इतना सारा करने के बाद अब वो ध्यान देंगे मेरे ऊपर। कई बार साधक ऐसी भावना को लेकर भी गुरु के पास जाता है, लेकिन वो भी चीज पकड़ लेते हैं गुरु, वास्तविकता का पता गुरु लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर उसकी चिकित्सा करते हैं। ये लक्षणाभिव्यक्ति, आंतरिक अस्तित्व का बोध हमारे व्यवहार के द्वारा गुरु लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तविक जिज्ञासु मिला, आज वास्तविक जिज्ञासु मिला, आचार्य यम को आज वास्तविक जिज्ञासु मिला, और आचार्य यम बहुत प्रसन्न हुए। आश्चर्य की बात यह आपकी पहले अध्याय की दूसरी वल्ली है, और इसके पहले भी बालक नचिकेता ने प्रश्न पूछा था, लेकिन उसका उत्तर सही ढंग से आचार्य ने नहीं दिया था, वो प्रशंसा करते जा रहे थे। प्रशंसा कोई समस्या का समाधान नहीं है, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन अब उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। बहुत सुंदर उत्तर है, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अब उस तत्व की बात कह रहे हैं जिस तत्व के बारे में पूछना चाह रहे हैं। अब एक ही श्लोक में उनको जो कहना था वो कह दिया, लेकिन आचार्य यम उस तत्व को पारंपरिक वैदिक औपनिषद विद्या का प्रतिपाद्य कहना चाह रहे हैं। जो तत्व हैं वो औपनिषद विद्या वेदांत ज्ञान का विषय है। हमारे ऋषियों की, हमारे उत्तर देने वाले लोगों की सबसे बड़ी एक विशेषता है, जैसे सुखदेव जी महाराज जी को राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, तो उसका उत्तर देते समय सुखदेव जी महाराज ने ये कभी नहीं बोला कि वत्स ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरी खोज है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और इसका उत्तर पहले भी दिया जा चुका है और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। यह हमारे ऋषियों की अपने प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहने की और ये परम विनम्रता की बात है। उनका अनुभव होते हुए भी, सुखदेव जी महाराज जी का अनुभव होते हुए भी, मैत्रेय का अनुभव होते हुए भी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बात मेरी अपने तरफ से, ये मेरी खोज, माने बौद्धिक प्रदर्शन हमारे ऋषियों में कभी नहीं रहा। और यहां पर भी आचार्य यम ये बात अपनी बात के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं वो सर्वे वेदा यत पदम आमनंति, जो मैं कहना चाहता हूं उसके बारे में वेदों में बहुत कुछ कहा गया है। और ये भी बहुत गहरी बात है, आप ध्यान देंगे, एक एक शब्द पर दृष्टि डालेंगे, हमारे शास्त्र बहुत गहरे अर्थों का प्रतिपादन करते हैं, सूत्रात्मक, और उसका विस्तार आप जितना चाहे कर सकते। सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, संपूर्ण वेद, यहां आपको मालूम है चार वेद हैं, ऋग यजु साम और अथर्व, चारों वेद कर्म उपासना और ज्ञान, कांड त्रयात्मको वेद, वेद में तीन कांड हैं। आप अक्सर इसको श्रवण करते रहते हैं, वेद में कहते हैं 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 मंत्रों में कर्म का प्रतिपादन, 16,000 मंत्रों में उपासना का प्रतिपादन और 4,000 मंत्रों में ज्ञान का प्रतिपादन। ये कांड त्रयात्मक वेद, कर्म उपासना और ज्ञान। और यहां आचार्य यम कह रहे हैं सर्वे वेदा, कांड त्रयात्मक जो चारों वेद, वो जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, जिस परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, जिसके बारे में तुम श्रवण कर रहे हो। अब यहां एक प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन ज्ञान के द्वारा संभव है, लेकिन कर्म और उपासना के द्वारा भी उसका प्रतिपादन कैसे है? औपनिषद विद्या वेदांत में ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है, लेकिन यहां पर आचार्य यम करें सर्वे वेदा यत पदम आमनंति, उनको तो ये कहना था कि भाई वेदांत ही जिसका प्रतिपादन करते हैं, लेकिन ये कह रहे कर्म उपासना और ज्ञान सर्वांगीण जो वेद हैं वो जिस तत्व का प्रतिपादन करते हैं। कर्म भी तत्व का ही प्रतिपादन करता है। हमारे जीवन में कई प्रतिबंध हैं, جہاں پر ہم ہیں وہاں سے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، ان پرتیبندھوں کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ مل، وکشیپ اور آورن ہمارے انتہکرن میں سب سے بڑا جو پرتیبندھ ہے وہ مل ہے۔ مل مانے واسنا، کامنا، وکار، جلن، گھرنا، ایرشا، مرتیو کا بھے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو مل بولتے ہیں۔ مل کا مطلب ہوتا ہے میلا پن، مل مانے اشدھی، چت کی اشدھیاں۔ یہ ہمارے آدھیاتمک جیون میں، آتم گیان میں، تتو بودھ میں سب سے بڑا پرتیبندھ ہے، اور اس پرتیبندھ کو دھونا بھی بہت ضروری ہے، اس کو مٹانا بھی ضروری ہے۔ اور اس کو مٹانے کا اپائے شاستر نے بتایا، نشکام کرم یوگ۔ بھگوان نے گیتا جی میں بھی بہت جگہ پر بولا ہے، بہت جگہ پر نشکام کرم یوگ کا پرتیپادن بھگوان نے گیتا جی میں بہت جگہ پر کیا۔ بھگوان جہاں پر بھی کرم کا ودھان کرتے ہیں وہ نشکام کرم یوگ کا پرتیپادن کرتے ہیں۔ کرمنیہ بادھ کارستے ما فلیشو کداچن، بھگوان نے کہا کرم کرنے کا تمہارا ادھیکار ہے لیکن کرم پھل کا ادھیکار نہیں، مانے نشکام کرم یوگ۔ بھگوان جگہ جگہ پر کہتے ہیں کہ آپ کرم کرو نشکام بھاؤ سے، اور نشکام بھاؤ سے جب ہم کرم کرتے ہیں نا تو ہمارے بھیتر کی جو کامنا ہے وہ دھیرے 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 دور ہوتی جاتی ہے۔ کامنا کو مٹانے کا اپائے اور کوئی دوسرا نہیں ہے، نشکام بھاؤ سے کرم کرتے رہنا، پربھو کا چنتن، جپ، دھیان، یہ ساری چیزیں ہمارے انتکرن کے مل کو مٹانے کے اپائے ہیں۔ نشکام کرم یوگ، اور یہاں تک سکام کرم یوگ بھی جو ہمارے ویدوں میں کرم کے روپ میں پرتیپادن کیا، سورگ کامو ایجیت آدی واکیوں کے دوارا، کہ آپ کو سورگ کی کامنا ہے تو آپ یگیہ کرو، ایسا بولا ہے۔ یہاں تک بولا ہے کہ آپ کو شراب پینے کی اچھا ہے، بولے کوئی بات نہیں، آپ یگیہ کرو اور اس یگیہ کے بعد شراب کا پان کرو۔ اب آپ کو بھی لگے گا کہ یہ بات کیا بول رہے ہیں، وہاں تو یہاں تو لکھا پنچ پنچ نکھا بھکشا، آپ کو مانس کھانے کی اچھا، بولے ہاں کھاؤ، پنچ پانچ پانچ نکھ والے کھاؤ، انہوں نے کی نہ دیا، یہ پانچ چیزیں تم کھاؤ۔ وہاں کھانے کا تاتپریہ نہیں ہے، کھانے پر نیمن کرنے کا تاتپریہ۔ اب کسی کو بتایا گیا کہ تم کو شراب پینا تو پیو، لیکن یگ کر کے پیو، اب آدمی کا نیمن ہو گیا نا، اب جب یگیہ کرے گا تب پیے گا، اب یگیہ کرنے تک تو اس کے جیون میں سیم ہوا۔ اور جو ویکتی یگیہ نہیں کر سکتا ہے یا جنہوں نے کیا نہیں، وہ بولے گا بھیا ہم نہیں پی سکتے کیونکہ ہم نے وہ کرم نہیں کیا ہے۔ اور وہاں پر بھی جو ویکتی یگیہ کر کے شراب کا پان کرتا ہے وہاں پر بھی شراب کے پان کی پروتی کو بڑھانا نہیں ہے، وہاں پر بھی بھوگ کی دوارا اس کو دھیرے دھیرے ویراگی میں لے جانا ہے۔ ہمارے اندر اتنا فورس ہے، واسنا کی تیورتا ہے، اور اس واسنا کی تیورتا کو کاٹنے کے لیے شاستر نے اپائے بتا دیا۔ واسنا کی تیورتا کئی بار بھوگ سے مٹتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھانے کی اچھا ہے بہت من میں آ جاتی، بہت من میں آ جاتی ہیں، اور اتنی تیورتا ہمارے اندر بڑھتی ہیں، لیکن آشچری کے بعد وہ چیز کھا لیتی تو ارے آدمی کو لگتا ہے کہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہم پاگل ہوتے جا رہے تھے۔ آدمی کو معلوم پڑتا ہے، بھوگ سے بھی بھوگیہ پدارتھ کی واستوکتا کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ تیورتا بھوگ کے دوارا کم ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے انتم تاوت کرمانی کوروت یاوت نہ نرویدت، بھاگوت کہتا ہے کہ جب تک آپ کرم کرتے رہو جب تک آپ کو ویراگیہ نہ ہو جائے، تب تک آپ کو کھانا ہے، کھاتے کھاتے کھانے سے ویراگیہ ہو جائے۔ بڑی گہری بات ہے، اب وہ بات الگ ہے کہ کھانے کے طریقے ہمارے صحیح نہیں ہیں، اس لیے کھاتے کھاتے کھانے سے ویراگیہ نہیں ہوتا ہے، हम सही ढंग से भोग में प्रवेश करें नैतिकता, चरित्र, संयम आदि के साथ, तो धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा, भोग से भी वैराग्य हो जाएगा। इसलिए शास्त्र ने जो भोग की बात, कर्म की बात, कर्मजन्य फल की बात, स्वर्गादि फलों की बात जो कही है, सकाम कर्म की कर्म का प्रतिपादन किया है, वो व्यक्ति की जीवन की कामनाओं को और तीव्रतर बनाने के लिए नहीं, उसकी कामना को धीरे धीरे कम करने के लिए, और कम करने का उद्देश्य यही है, उसको अकाम निष्काम बनाकर उस तत्व को पाने की योग्य बनाना है। जैसे कि मां अपने बच्चों को धीरे धीरे समझाते, बेटा ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चा जब नहीं मानता तो मां थोड़ा सा दे देती, ले, उसको मालूम है ये नहीं खाना है, लेकिन मां बोलती बेटा थोड़ा सा ले ले, और उसके धीरे धीरे उसकी इच्छा पूरी करा देती, खत्म करा देती है। एक कोई साधु थे, उनकी एक बड़ी अद्भुत बात है, उनको कोई एक फल बहुत अच्छा लगता था और वो फल खट्टा था, खाने के बाद गला खराब हो जाए, कुछ बुखार आ जाए, लेकिन वो उनको बहुत अच्छा लगता था, फल बहुत अच्छा लगता था। मां बहुत समझाती, पिताजी बहुत समझाते, लेकिन वो बच्चा मानता ही नहीं था। एक दिन उनके पिताजी ने बहुत सुंदर सुंदर वो पके हुए फल टोकरी में भर के अपने बच्चे के सामने रखा और उन्हें कहा कि आओ बेटा, आज जितने तुमको फल खाना है खा लो, मां ने कहा क्या कर रहे हो तुम, ये बीमार पड़ जाएगा, देना हो तो एक दो मुश्किल से दो, ये बीमार पड़े। उन्होंने कहा नहीं, इसको खाने दे, आज इसको भरपेट खाने दिया, आज कोई नहीं टोकेगा इसको। पत्नी को रोका उन्होंने, बच्चे को इतना खिलाया इतना खिलाया इतना खिलाया इतना खिलाया, बोले बेटा आज इतना, और वो बच्चा देख देख के खाता जा रहा, और वो जैसे खाया वैसे बीमार पड़ गया वो। और उसके पिता ने बोला बेटा ले और खा ले थोड़ा, बोले नहीं अब नहीं खा सकता। उस बच्चे को मालूम पड़ा कि ये खाने से भी बीमार पड़ा हो, और पिताजी बोले ये बहुत सुंदर है, ओहो हो, और उसके सामने खा रहे थे वो, और वो बोल रहे थे ले इसको खा ले बहुत मीठा बहुत, और वो बच्चा बोला था नहीं पापा ये नहीं खा सकता हूं, क्योंकि ये खाने से तो मैं बीमार पड़ गया। और वो स्वस्थ होने तक उसको बोलते रहे खा ले खा ले, और उस बच्चे के मन में ऐसी घृणा हो गई उस फल के प्रति। उस महात्मा ने आत्मचरित्र में लिखा है, उसके बाद मेरे मन में कभी फल खाने की इच्छा नहीं हुई, और जब कभी फल मेरे सामने आता था तो ऐसा लगता था कि भैया ये हटाओ हमारे सामने से हटाओ। ये हमारे वेदों की प्रक्रिया है, जीवन को निष्कामता में, अकामता में, निरासक्ति में कैसे ले जाया जाए। ये भोग से भी यदि सही ढंग से भोग हो तो हमें वो वैराग्य में ले जाता है। एक और एक महात्मा था, उन्होंने अपनी जीवन की घटना सुनाई, बोले बचपन में मेरे को दिया बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लगता था दिया, और मैं बार बार दिए को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता था। वो पुराने जमाने में दिए रहते थे, बिजली तो थी नहीं घर में, ऐसे कहीं दिए मिट्टी के, और वो बच्चा जाके पकड़ना चाहता था, मां परेशान हो जाती थी, रोटी बनाती और अग्नि की तरफ बढ़ता बच्चा, उसको बहुत अच्छा लगता था अग्नि दिया अगरबत्ती मोमबत्ती। एक दिन पिता ने बोला कि रुको रुको, जैसे बच्चा दिए की तरफ बढ़ने लगा, पिता ने बोला रुको रुको, पत्नी को बोला रुको तुम, उसको जाने दे दिए की तरफ जाने दे। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो, वो तो जला अपना हाथ जला देगा। उसके पिता ने बोला बिल्कुल उसको जाने दे, दिए की तरफ बिल्कुल जाने दे। वो गया बच्चा, पहले तो देखा कि पिताजी रोक तो नहीं रहे, मां रोक तो नहीं रहे, पहले देखा इधर उधर देखा, वो समझ गया अब रोकने वाला कोई नहीं, और खुश हो गया और खुश हो गया, और दिए कि आगे गया और वो देखता भी जा रहा था कि मेरे को कोई रोकने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमेशा रोकते थे लोग। आश्चर्य की बात, जैसे ही बच्चे ने दिए में हाथ डाला, आपको तो मालूम है वो दिया कभी स्वागत थोड़ी करता है, जैसे ही उन्होंने दिए में हाथ डाला और उसका हाथ जला और एकदम चिल्ला पड़ा बच्चा, बोले तत्ता, वो महात्मा जी सुनाते थे, वो बोले जैसे ही दिए ने मेरे को जलाया और उसी समय मेरे मुख से एक शब्द निकला बोले तत्ता, और भागे भागे आए और मां के गोद में, اور دیے کی طرف اشارہ کر کے بولنے لگے تتا. اور اب جیسے ہی دیا دیکھتا بچہ وہ ماں کو بولتا تتا, اور کاٹ یہ جلا دے گا. ماں بولتی پکڑ, بولے نہ تتا یہ کاٹ جلا دے گا. پتا جی بولتے جا اگنی کو پکڑ, بولتے تتا یہ جلا دے گا. یہ ہمارے ویدوں کی پرکریا ہے کہ آپ انوبھو کریں گے تو بہت سارے انوبھو آپ کے جیون میں بہت گہری سمویدناؤں کے دوارا آپ کو ویراگی میں لے جائیں گے, آپ کو اناسکتی میں لے جائیں گے. اس لیے کرم کا مارگ, چاہے وہ نشکام کرم کا مارگ ہو چاہے سکام کرم کا مارگ ہو, ہمیں لے جانا ہے اناسکتی میں. اور اناسکتی چت کی شدھی ہے, آسکتی چت کی اشدھی ہے. جہاں پر ہمارے من میں آسکتی ہوتی ہیں وہ آسکتی ہماری اندریوں کو جگاتی ہیں. یہ آسکتی اندریوں کا جاگرن ہے, یہ آسکتی اندریوں کا پوشن ہے. یعنی آسکتی ہمارے من میں نہ ہو تو ہماری اندریوں کا جگنا ہی سمبھو نہیں ہے. یعنی روپ کی آسکتی نہ ہو تو ہماری آنکھ ہی نہ کھلے. آکار کے پرتی آسکتی نہ ہو, یہ آکاروں میں جو سوندر بدھی ہیں وہ نہ ہو, یہ آکاروں کا آکرشن یہ ہمارے آنکھ کے کھولنے کے پرتی کارن ہو جاتا ہے. اور یدی آکرتی کے پرتی روپ آدی کے پرتی آکرشن نہ ہو, آسکتی نہ ہو تو ہماری آنکھیں نہ کھلے. یہ ہماری ساری اندریاں, پانچوں گیانیندریاں, پانچوں کرمیندریاں, یہ ساری آسکتیوں کے دوارا جگتی ہیں. یہ بھیتر کا آکرشن ہماری اندریوں کو باہر کر دیتا ہے, بہرمکھ ہو جاتی ہے. اور بہرمکھ اوستھا میں آتم ستا کا بودھ سمبھو نہیں ہے. اس لیے ہمیں انترمکھ ہونا, سمویدنا کا انترمکھ ہونا بہت ضروری ہے. ہماری سمویدنا باہر پرگٹ ہو جاتی ہے, جیسے کھڑکی کھول دیتے ہیں نا ویسے باہر آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس لیے باہر کا گیان اندر آ جاتا ہے. پانچوں گیانیندریاں مانو جیسے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں, پانچوں گیانیندریاں سمویدنائیں پرگٹ کرتی ہیں. باہر کی سمویدنائیں وہ اپنے بہت سارے وشیوں کو لے کے اندر آتی ہیں, کیونکہ گیان کبھی نروشیک نہیں ہوتا ہے. گیان کا کوئی نہ کوئی وشے ہوتا ہے. جو بھی گیان ہوتا ہے وہ نروشے نہیں ہوتا ہے. نروشے گیان تو پرماتما ہے اور سوشے گیان اناتما ہے. یہ دنیا کے جتنے بھی گیان ہیں وہ نروشے نہیں سوشے ہوتے ہیں. ہماری جتنی سورتیاں ہیں وہ سوشے ہوتی ہیں. ہماری اندریاں باہر جاتی ہیں اور جانے کے بعد پھر وہ سنسکار لے کے اندر آ جاتی ہیں. پھر وہ سنسکار سمرتیوں کو پیدا کرتے ہیں. ہمارا سمپورن گیان سمرتیاتمک ہے. اس لیے بھگوت گیتا میں سمرتی شبد کا پریوگ کیا ہے, کروت سے پرارمبھ کر سمرتی بھرنش تک. اس لیے بھگوان نے بولا سمرتی بھرنش وناش کے پرتیکارن. اور وہ کون سی سمرتی؟ سمیک سمرتی, جس کو بدھ نے کہا سمیک سمرتی. ہمارے بھیتر جب کروت کی جوالائیں پرگٹ ہو جاتی ہیں تو ہمارے بھیتر جو سمرتی ہیں اس کو نشٹ کر دیتی ہیں. اور وہ سمیک سمرتی معنی بہت اچھی اچھی جو یادیں ہیں, جیسے ہمارے سامنے گرو ہیں اور گرو کے پرتی آدر, آستکتا, آستھا, مہتو بدھی شاستر نے نرمت کی ہیں. ایسی اتم کوٹی کی جو سمرتی ہیں ہمارے من میں, وہ کروھ اس کو سماپت کر دیتا ہے. پھر اس سمے یاد نہیں رہتا یہ ہمارے گرو ہیں, یہ ہماری ماں ہیں, یہ ہمارے پتا ہیں, ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے متر ہیں. یہ سمرتیاتمک بودھ ہے. اس لیے ہمارے پاس جو بھی چیزیں مہتوپورن جو بھی چیز ہیں وہ سمرتی ہیں. اس لیے بھگوان بدھ نے کہا سمیک سمرتی, سمیک سمرتی. اور بھگوان نے بھی بولا نشتو موہ سمرتی لبھتوا. وہ سمرتی ہیں, وہ شاستر کی سمرتی ہیں. اس لیے آپ بولتے ہیں سمرتی سمرتی پراڑا ایسا بولتے ہیں. وہ سمرتی وہ گیان بہت گہری چیزیں. وہ گیان کبھی نروشے نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں اور جیسے سمرتی جاگتی ہیں, آپ کے ادھیاتمک سادھنا میں پرتیبندھ گیان نہیں, وہ سمرتی ہیں. آپ بیٹھے ہیں اور کوئی چیز آپ کے سامنے آئی وہ کیا ہے؟ وہ سمرتی ہیں. یاد ہے، کسی کی یاد آ گئی اور آپ کھو گئے، اس یادوں میں کھو گئے، کیونکہ اس یادوں کا وشے ہے آپ کے سامنے. آپ کو کوئی یاد آتا ہے تو چہرہ بھی تو ہوگا، یاد مانے سمرتی، اور اس سمرتی کا کوئی چہرہ ہوگا، کوئی آکرتیاں ہوگی، روپ ہوگا، سوندریہ ہوگا، آکرشن ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوگی، اسے دیش جڑا ہوگا، کال جڑا ہوا، ویکتی جڑے ہوئے ہوں گے. اس لیے سب سے مہتوپورن چیز ہمارے جیون میں سمرتی، اور سمرتی کو پیدا کرنے والا انوبھو ہے، اس انوبھو کو پیدا کرنے والا اندریاں ہیں، اندریوں کو جگانے والی واسنا ہے، اور واسناؤں کا مول اجیان ہے. اب ہماری جیون میں جب تک وہ واسنا کا کشے نہ ہو، تب تک ہماری اندریوں کی شیتلتا سمبھو نہیں ہے، اور اندریوں کی شیتلتا سمبھو نہیں ہے تو پھر وہ سمرتیاں پیدا کرے گی. اندریاں بہت ساری چیزیں پیدا کرے، اپدرو کھڑا کر دے. اس لیے ہمارے شاستر نے کہا کہ سب سے پہلے اس واسنا کو نینترن کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کا جو مول تتو ہے، اب اس واسنا کو نینترن کیسے کرے؟ تو بھوگ کے دوارا، یوگ کے دوارا، نشکام کرم یوگ کے دوارا. اس لیے ہمارے شاستر نے تین اپائے بتائے اس واسنا پر نینترن کرنے کے لیے. نشکام کرم یوگ کا آشرے ہمیں عادت ڈالے، نشکام کرم کرنے کی بھی عادت ڈالے. جب تک ہم نشکام کرم کرنے کی عادت نہ ڈالیں، پرم پوجیہ مہاراج شری کل کے پروچن میں کہہ رہے تھے کہ آدمی سوچتا ہے یہ کرنے سے کیا ملے گا، یہ کرنے سے کیا ملے گا، ہمیشہ سوچتا ہے ہم کو کیا فائدہ ملنے والا ہے، کیا فائدہ. اور وہ فائدے کے چکر میں تو ہم بہت زیادہ پھر فائدے والے ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پر فائدہ دیکھنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ ہم بھگوان کے مندر میں بھی جائے تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ جانے کا کیا فائدہ، بھگوان کی پوجا کرے گا تو کیا فائدہ، پرنام کرنے کا کیا فائدہ. اور اس لیے دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے کام لوگوں نے کیے ہیں وہ سب نشکام کرم یوگی تھے. انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ کریں گے تو کیا ملے گا ہم کو. اب آپ گاندھی جی کو پوچھنا کہ آپ اتنا بڑا کام کرتے رہے تو اس سمے آپ کے من میں یہ کامنا پیدا ہوئی کیا کہ یہ کام کروں گا تو میرے کو کیا ملے گا؟ افریقہ میں، دوسرے دیش میں، وہاں کے لوگوں کی دردشا اور وہ کیسی کرونا، ان کے دکھوں کو مٹانے کے لیے، ان کو نیائے دلانے کے لیے وہاں پر وہ آندولن کر رہے ہیں، وہاں پر وہ بہت بڑا پروشارتھ کر رہے ہیں. ان کے من میں جب یہ بھاؤ پیدا ہوتا اس سے ہم کو کیا ملے گا، تو کبھی نہیں کر پاتے ہو. یعنی گاندھی جی کے من میں یہ بھاؤ پیدا ہوتا کہ اس سے ہم کو کیا ملے گا تو گاندھی جی کبھی نہیں کرتے. یہاں تک گاندھی جی یہ سوچتے کہ دیش سوتنتر بھی ہو جائے تو ہم کو کیا ملے گا. آدمی سوچتا ہے کہ ہم کو کیا ملے گا، آدمی سوچتا ہے کہ آدمی چناؤ جیت جائے تو ہم کو کیا ملے گا. یعنی آپ اتنا بھی ہیں تو آپ کرم نہیں کر سکتے، پھر آپ آلسیہ میں، آپ پرماد میں جائیں گے. آپ کا وراٹ کرم جب تک آپ نشکام نہیں ہوں گے تب تک پیدا ہونا سمبھو نہیں ہے. اس لیے دنیا کے شریشتم لوگ جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا وہ سب ایسے نشکام تھے، وہ ویکتیگت ان کی آکانکشا نہیں تھی. اس لیے نشکام کرم یوگ بھگوان کا عادت ڈالو، نشکام کرم کرنے کی عادت ڈالو، کرم کرو، تمہاری درشٹی پوری کرم پر ہو، لیکن کرم سے ملنے والا جو پھل اس پر تمہاری درشٹی نہ ہو. یہ نشکام کرم چت شدھی کا سروتم اپائے ہے، سروتم اپائے. اس لیے بھگوان نے آپ کو گیتا جی میں ہر جگہ پر یہ بات بولی، اسنگ ہو کے کرم کرو، اسنگ ہو کے کرم کرو، اسنگ ہو کے کرم کرو. اس کے دو فائدے، سدھ جیون میں فائدے، ہم سفل ہو، اور سفلتا کی بہت گہری تیور ویدنا سمویدنا نہ ہو. کرم کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے کرم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے من میں بہت کوئی گہری چیز نہیں ہے. یہ چیز کرنے سے ہی پھل ہم کو ملے گا، اور مل گیا تو اس کے بعد آپ ابھیمان میں پرویش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، سفلتا آپ کو آتما ابھیمان میں نہیں لے جائے گی، آپ کو ابھیمان میں، اہنکار میں نہیں لے جائے گی. اور اہنکاری ہونا ایک بہت بڑی اسفلتا ہماری جیون کی ہے. ویکتی جب اہنکاری ہوتا ہے تو اساودھان ہو جاتا ہے، व्यक्ति कर्म के प्रति असावधान हो जाता है। बहुत बड़ी सफलता व्यक्ति को कर्म के प्रति असावधानी में ले जाती है। एक छोटा सा बच्चा है और बहुत ज्यादा मार्क्स मिले उसको और लोग बोलने लग जाए तुम बहुत बुद्धिमान हो, बच्चे का ध्यान हट जाता है पढ़ने की तरफ से, वो सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूं। इसलिए आप किसी साधु को बोलना कि आप बहुत ज्यादा साधु, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वो सोचता है कि मैं हो गया अच्छा, क्योंकि अच्छे होने का प्रमाण बाहर से नहीं भीतर से होता है। बाहर से अच्छे होने का प्रमाण नहीं मिलता है, प्रमाण तो भीतर से होता है कि हम कितने अच्छे हैं हमें मालूम है। लेकिन उस समय आदमी भ्रम में प्रवेश करता है, आदमी सोचता है कि मैं अच्छा, मैं सफल, और उसके बाद उसकी योग्यता को आगे बढ़ाने की जो पुरुषार्थ की मनोवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है फल के ऊपर दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के जीवन में। अभिमान और अभिमान जन्य कर्म के प्रति जो दुर्लक्ष है ये बहुत बड़ा नुकसान है उसका। और जिसका नारायण फल के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है वो व्यक्ति कर्म करता जाता है, मिला ठीक है, और नहीं मिलने के बाद व्यक्ति निराशा में हताशा में नहीं जाता है, उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाता नहीं है। और वो बहुत ज्यादा सफलता के ऊपर ध्यान दे तो आदमी असफल होने के बाद आत्मविश्वास में नहीं रहता, उसका डगमगाने लगता है, निराश होने लगता है, हताश होने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा कामना ही मत करो, निष्काम कर्म करो। अब वो निष्काम कर्म करेगा तो आदमी सफलता में और असफलता दोनों अवस्थाओं में अपने को कर्मयोगी बना रखे। इसलिए सर्वोत्तम उपाय धीरे 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 निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर हम अपने वासनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लें। दूसरा उपाय कामना के द्वारा कामना की निवृत्ति, जैसे मैंने अभी आपको बताया भोग भी व्यक्ति को योग में निराशक्ति में ले जाता है। और तीसरा जो उपाय है वो भगवत आश्रय, तीसरा उपाय है भगवत आश्रय। हम जप करें, भगवान का पूजन करें, ये भक्ति का भाव है और इससे भी आदमी के वासनाओं पर नियंत्रण हो जाता है धीरे 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 धीरे। और वासनाओं पर नियंत्रण का अर्थ है मल रूप जो दोष है इसको मिटाना, जो आपके वेदांत में हर जगह पर इसका उल्लेख किया है। मल 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 माने कचरा, मल माने वासना, इसको मिटाने के लिए संपूर्ण वेदों में कर्म का प्रतिपादन मल रूप दोष को मिटाने के लिए किया है। इसलिए आप सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, अब यहां सर्वे वेदा का अर्थ कर्म प्रतिपादक वेद ही उसी परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसकी विधा अलग है कि आप निष्काम कर्म अथवा सकाम कर्म कर अपनी जीवन की वासनाओं पर नियंत्रण, और जीवन की वासनाओं पर नियंत्रण करना भी परमात्मा की प्राप्ति का अंग है। इसीलिए कर्म भी उसी तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, विरोध नहीं है। जहां पर जो भी कर्म व्यक्ति कर रहा है वो भी धीरे 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 परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए शास्त्र जो भी आपको कर्म का विधान कर रहा है वो धीरे धीरे वासना पर नियंत्रण कर हम परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बन सके। और कोई उपाय भी तो नहीं है ना, परमात्मा को पाने के लिए और क्या उपाय है। एक छोटा सा बच्चा है और उसको आपको यूनिवर्सिटी में भेजना है, उसके द्वारा आपको पीएचडी कराना है, तो आपको उसको एबीसीडी तो सिखाना ही होगा, आपको पहली कक्षा में उसको प्रवेश दिलाना ही होगा। पहली कक्षा में प्रवेश दिलाए बिना आप उसे पीएचडी कैसे कराओगे। क्रमिक विकास, ये कर्म का प्रतिपादन हमारे जीवन का क्रमिक विकास है। ये क्रमिक विकास की अवधारणा हमारे वेदों ने रखी, इसलिए सबसे पहले कर्म का प्रतिपादन बहुत सरलतम ढंग से व्यक्ति उस तत्व को पाने के योग्य बन सके। और दूसरा जो प्रतिबंध हमारे जीवन में है वो है विक्षेप का प्रतिबंध। वासना हमारे चित्त को विक्षिप्त कर देती है, इसलिए वासना के क्षय के साथ चित्त की स्थिरता भी बहुत जरूरी है। चित्त की स्थिरता भी बहुत जरूरी है। और चित्त की स्थिरता के लिए उपाय बताया है उपासना। ये उपासना जो है ये चित्त को स्थिर बनाने का सर्वोत्तम उपाय। आपका जो योग है, जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये सारी चीजें जैसे ओंकार का ध्यान, प्रतीक ध्यान, साकार विष्णु भगवान में जो ध्यान की प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया है, वो सारी प्रक्रियाएं चित्त के विक्षेप को दूर करने के लिए कहा है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान व्रतयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाश्च। पतंजलि योग दर्शन आप पढ़ना, उसमें बहुत विस्तार रूप से हमारी वृत्तियां कितनी हैं और वो वृत्तियों का फैलाव कैसा है और ये वृत्तियों के फैलाव को कैसे रोका जाए, कैसे उसका निरोध किया जाए। और इसीलिए हमारा उपासना का शास्त्र, उपासना का जो प्रकरण है, ये वेदों ने हमारे सामने रखा। भगवान श्री कृष्ण के सामने जब अर्जुन ने प्रश्न किया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, अब अर्जुन निष्काम है, अकाम है, वासनाओं पर नियंत्रण है, लेकिन मन भी चंचलता है और वो अपने चित्त को एक जगह पर स्थिर करना चाहता है। जब भगवान ने कहा समत्व रूप जो ब्रह्म तत्व है, जहां वैषम्य नहीं है, जहां न ऊंचा नीचा है, देशाक्रांत कालाक्रांत जो तत्व नहीं है, अखंड चिदैक रस, और उसमें तुम अपने चित्त को स्थिर करो। मानो कि उस समय अर्जुन ने आंख बंद की और आंख बंद करके उस कोशिश करने लगा कि उस तत्व में मैं अपने चित्त को स्थिर करूं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आंख खोली और आंख खोल करके अर्जुन ने भगवान के सामने प्रश्न किया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी। अर्जुन ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत गहरे शब्दों का प्रयोग किया है, केवल इतना नहीं बोला चंचलम, चंचल तो सबका मन है, लेकिन प्रमाथी और बलवदृढ़ ये दो शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन ने बताया पुरुषार्थ करने के बाद भी वो वश में नहीं आया। भाई आप किसी बैल को आप पकड़े तो आप ये कब कहोगे कि ये तो बहुत ताकतवर है, कब बोलोगे? उसके ताकत का एहसास आपको कब होगा? जब आप पकड़ेंगे तब ना। आपने उसके पूंछ को पकड़ा और उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन रुका नहीं, आपको भी खींच के चला गया, खींचते हुए ले गया, तो आप क्या, ओहो ये तो बहुत ताकतवर है। आप बिना छुए, आप उससे बिना टच हुए कैसे आप अनुमान लगाएंगे कि वो कितना शक्तिशाली है? आप ज्यादातर ये बोल सकते हैं उसका मोटापा दे, ओहो ये तो बड़ा ताकतवर है, लेकिन आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना ताकत। लेकिन आपने पूंछ पकड़ा और खींच के ले गया तो आप ओहो बहुत ताकतवर है। इसलिए बलवत दृढ़म ये शब्द जो अर्जुन के दो हैं, उन्होंने कोशिश की और बात भी सही है। बिना कोशिश मालूम कैसे पड़ेगा कि मन कितना चंचल है? बिना चले मालूम कैसे पड़ेगा कि हम चल भी सकते हैं? हम बिना उठे कैसे मालूम पड़ेगा कि हम गिरने के बाद उठ भी सकते हैं? हम गिरे और हम उठे तब मालूम पड़ा कि हाँ हम गिरने के बाद भी उठ सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है, पहाड़ चढ़े ही नहीं, तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि हम गिरने के बाद उठ सकते हैं और पहाड़ भी चढ़ सकते हैं? इसलिए अर्जुन का पुरुषार्थ, यहां पर अर्जुन का पुरुषार्थ परिलक्षित होता है। अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला है कि चंचलम ही मन कृष्ण, कभी माला लेके बैठे हो कभी ध्यान लगाया है? लगाया ही नहीं। कभी माला लेके बैठे ही नहीं, कभी कोशिश की है? किए ही नहीं। और उसके बाद आप बोलो कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बल, वो बात बनेगी नहीं। इसलिए अर्जुन की अनुभव की बात, और इसीलिए भगवान ने भी यही बात बोली। भगवान ने बोला बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे असंशयम। भगवान ने असंशयम ही महाबाहु, हे महाबाहु तुम बहुत पुरुषार्थी हो, तुम बहुत श्रमशील हो। क्या महाबाहु का अर्थ ये मत सोचना कि उसके भुजदंड बहुत बड़े बड़े थे, उस अर्थ में नहीं है। या महाबाहु का अर्थ है तुम बहुत श्रमशील हो, तुम बहुत पुरुषार्थी हो, तुम किसी भी चीज को अपने हाथ में लेते हो तो उसको सफल बनाने की कोशिश करते हो, ये महाबाहु असंशयम तुम ठीक बोल रहे हो। मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, भगवान ने सहमति व्यक्त कर दी और उसके उपाय उसका उपाय बता दिया, अभ्यास है नौनते वैराग्य, बोले अभ्यास करो, ये जो अभ्यास है ना ये उपासना का मार्ग है, ये होगा चित्त वृत्ति निरोधा, बार बार ध्यान उपासना के द्वारा हम चित्त में जो विक्षेप रूप प्रतिबंध है उसको दूर करना है। इसलिए आपका उपासना जो कर उपासना जो वेद कांड है वो इसमें सार्थक है, उपासना का प्रतिपादन भी चित्त के विक्षेप रूप प्रतिबंध पर नियंत्रण कर आत्मज्ञान में ले जाना है, अंततः आत्मज्ञान में जाना है। ज्ञान का प्रतिपादन तो तत्व का प्रतिपादन ही है, इसलिए सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, कर्म उपासना और ज्ञान मल विक्षेप और आवरण इन तीनों दोषों का प्रतिपादन, इन तीनों को हटाने के लिए और आत्मज्ञान में ले जाने के लिए तत्व का प्रतिपादन है। ये पहले पंक्ति का अर्थ हुआ सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। आज यहीं पर विराम, अभी आप जप करेंगे थोड़ा सीधे बैठ जाएं। ॐ ह्रीं नमः शिवाय, 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 ॐ ह्रीं नमः शिवाय 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः